रोम रोम में रमत स्वामी राम नाम भज अंतर्यामी। हमारी इस देह के रोम रोम में वो प्रभु रम रहे हैं, वो प्रभु उपस्थित हैं। और राम नाम भज अंतर्यामी, तो वाणी उस राम की बात कर रही है जो हमारे देह के रोम रोम में बस रहे हैं। उस राम का भजन इस देह के अंदर करना है। तो उस राम का भजन अंदर कैसे होता है? हम तो बाहर के नाम को ही राम समझते हैं। ये एक रहस्य की बात है। इस रहस्य को जो सदगुरु है वो जानता है, वो अपने अनुभव से जानता है। और ये वही अनुभवी वाणी है जो हमारा मार्गदर्शन कर रही है। तो जिस प्रभु की याद में हमको चैन मिलता है, मन के चिंतन से छुटकारा मिलता है और प्रभु के आनंद का बोध हमको इस देह के अंदर ही होता है, तो वो कैसे हो इसके लिए सत्पुरुष मार्गदर्शन करते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने एक वाक्य कहा है, छोटा सा वाक्य है लेकिन इसका रहस्य उसमें छिपा हुआ है। वो कहते हैं, संध्या गायत्री में लीन होती है और गायत्री प्रणव में लीन होती है। संध्या हम जानते हैं, संध्या कहते हैं संधि काल को, जब रात्रि खत्म होती है, सवेरा होने वाला होता है, तो बीच में एक संधि काल आता है जिसमें थोड़ा सा अंधेरा भी है, थोड़ा सा उजाला भी है। वो सबसे उपयुक्त समय होता है ईश्वर की प्रार्थना करने का, ईश्वर का भजन करने का। इसी प्रकार सायंकाल भी संध्या काल होता है। इसलिए देखा होगा आपने मंदिरों में, जगह जगह मस्जिदों में उस समय अजान होती है, प्रार्थनाएं होती हैं। इस संधि काल में जब दो वक्त मिलते हैं, वो प्रभु के भजन का सबसे अच्छा अवसर होता है। तो इसीलिए उस समय जो उपासना करते हैं लोग, जो प्रार्थना करते हैं प्रभु की, उसको संध्या कहा जाता है। संध्या बाहर जितने प्रकार की उपासना हम चाहे मंदिर में करते हैं, गुरुद्वारे में करते हैं, मस्जिद में करते हैं, घरों में करते हैं, बाहर जितनी उपासना ईश्वर की होती है नाम रूप की, वो सारी की सारी संध्या के अंतर्गत आती है। वो कहते हैं संध्या गायत्री में लीन होती है। संध्या करते करते जो व्यक्ति शुद्ध जीवन व्यतीत करता है, झूठ बोलने से परहेज करता है, बेईमानी से परहेज करता है, दूसरों को दुख देने से परहेज करता है, दूसरों को दुखी जीवों को सुख देने की कोशिश करता है, प्रभु की प्रेम से याद करता है, तो ऐसे व्यक्ति की संध्या ईश्वर कृपा की पात्र बनती है, अर्थात उस पर आगे ईश्वर कृपा करते हैं। तो फिर कहते हैं कि संध्या गायत्री में लीन होती है। फिर वो सारी बाहर की उपासना छोड़कर उसको ऐसा मार्गदर्शन मिलता है कि वो गायत्री, कहते हैं गायत्री मंत्र को, जो ऋग्वेद का मंत्र है, जिसका मौन होकर अंदर स्मरण किया जाता है, अंदर की उपासना शुरू होती है। तो बाहर की उपासना छूटकर वो अंदर अंतर्यामी की उपासना में वो लग जाता है। अब वो कहते हैं कि गायत्री प्रणव में लीन होती है। तो सिद्ध मंत्र का जाप करते करते वो जो अंतर्यामी राम है, जो रोम रोम में रमा हुआ है, उसी का नाम प्रणव भी है। प्रणव कहते हैं जिसको आप ओम करके कहते हो ना, ये प्रणव है। अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, जिसको अभी वाणी कह रही थी, रोम रोम में शब्द गुंजारे, राम नाम तत्व कियो विचारे। ये वो ईश्वरीय तत्व है, शब्द रूप परमेश्वर है, जो घट घट में व्यापक है। आपने कभी शिव जी की आराधना की होगी, आरती सुनी होगी, तो उनकी आरती में भी आता है, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणव अक्षर के मध्य ये तीनों एका। प्रणव अक्षर, तो वही रामकृष्ण परमहंस प्रणव अक्षर की बात करते हैं कि गायत्री प्रणव में लीन होती है। तो जिसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश सब जिसमें लीन हो जाते हैं, सब जिससे उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रकट होते हैं, तो वो प्रणव है। वही राम नाम की ध्वनि है जो हमारे रोम रोम के अंदर हो रहे। तो यदि मैंने अंतर्यामी ईश्वर का अनुभव करना है तो मुझको सत्पुरुषों की बात माननी पड़ती है, उनके मार्गदर्शन के अनुसार चलना पड़ता है, इसीलिए वो संसार में बार बार प्रकट होते हैं। जिसको भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि अजो अपि सन अव्यात्मा भूता नाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय। वो कहते हैं कि अजो अपि सन अव्यात्मा, कहते हैं अजन्मा और अविनाशी होने पर भी ईश्वर वास्तव में अजन्मा है, उसका जन्म नहीं होता, क्योंकि वो शरीरधारी नहीं, सर्वव्यापक है, वो मेरे अंदर भी विराजमान है, मेरे रोम रोम में रमा हुआ है। तो वो ईश्वर अजन्मा है, जो अजन्मा होता है वो अविनाशी भी होता है, जिसका जन्म होगा उसका नाश भी होगा, जिसका जन्म ही नहीं है उसका नाश कैसे होगा। वो कहते हैं कि अजन्मा और अविनाशी होने पर भी, और क्या, सारे प्राणियों का ईश्वर होने पर भी, अर्थात सारे प्राणियों का मालिक होने पर भी, मेरा जिस्म चल रहा है, मेरा जिस्म जिंदा है, किस कारण से जिंदा है, मेरे कारण से तो जिंदा नहीं है। तो इस जिस्म के अंदर जो जान है, जो जीवन शक्ति है, जो जीवन सत्ता है, उसी का नाम ईश्वर है, उसी का नाम राम है। तो इसलिए वो मालिक है, इस देह की मालिक वो जीवन सत्ता है, वो ईश्वर है, वो आत्मा है। तो इसीलिए गीता में कह रहे हैं कि सारे प्राणियों का मालिक होने पर भी, ईश्वर होने पर भी, प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्माय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूं। तो जब प्रभु अवतार रूप में हमारे सामने आते हैं, चाहे वो सदगुरु के रूप में है, चाहे वो राम के रूप में है, चाहे वो कृष्ण के रूप में है, वो एक ही सत्ता है, उस सत्ता में भेद नहीं है। गुरु भी दो नहीं होते, गुरु केवल एक होता है। महर्षि रमण से जब पूछा गया, महर्षि एक गुरु पर विश्वास होने पर क्या दूसरे गुरु पर भी विश्वास किया जा सकता है, तो महर्षि रमण कह रहे हैं कि गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। तो सत्पुरुषों को वहम नहीं होता, हम लोगों को वहम होता है कि मेरा गुरु और तेरा गुरु। तो वो जो चेतन सत्ता है, जो सारे जगत को चला रही है, जो मेरे शरीर को भी चला रही है, वही गुरु रूप में संसार में आती है। तो उनका जो शरीर है वो योग माया है। इसलिए महाराज कहते थे, प्रेमी ये खल्लड़ तेरा गुरु नहीं है। जब महाराज जी के चरण उनके शिष्य कभी दबाते थे तो शिष्यों को वहम होता था ये शरीर गुरु है, तब उनको अलर्ट करते थे, उनके मार्गदर्शन के लिए कहते थे, प्रेमी ये खल्लड़ गुरु नहीं है। जब तुम अंदर साधना करोगे और अंदर जब तुमको अनुभव होगा, तब तुमको आश्चर्य होगा कि गुरु को हमने समझा क्या था और गुरु निकला क्या। तो इसलिए सदगुरु आपको बाहर की उपासना से अंदर की उपासना में लगाना चाहता है, इसीलिए वो संसार में आता है आपका मार्गदर्शन करने के लिए। यदि गुरु ना होते तो हम तो बाहरी उपासना में लगे रहते। ईश्वर का अनुभव अंदर होता है और उसके अनुभव से चैन कहां मिलता है? हम जानते हैं चैन हमको मिलता है, वो मिलता कैसे है? बेचैनी मेरे मन के अंदर होती है, जो तरह तरह के विचार उठते हैं उसके कारण मैं बेचैन रहता हूं। भय लगता है मुझको, अचानक भय का संकल्प मन में आता है, वो कहां आता है? मन में ही तो आता है वो। प्रेम का संकल्प आता है, किसी कोई प्रिय लगता है, इससे प्रेम करने को मन करता है, संकल्प कहां आता है? मन के अंदर ही तो आता है वो। तो प्रभु जो अंतर्यामी है वो हमारे मन के दुख को, मन की बेचैनी को खत्म कर दे। तो अंदर उपासना होगी ही नहीं तो मन की बेचैनी कैसे खत्म होगी? इसीलिए इस रहस्य को समझना चाहिए कि ये मंत्र होता क्या है। महाराज जी जब 13 वर्ष की आयु थी इनकी, उस समय वो जंगल में जाकर समाधिस्थ हो जाया करते थे। बचपन से उनके ऐसी स्थिति थी, बड़ा भयानक जंगल था, पीर ख्वाजा का जंगल। दिन में भी गांव वाले वहां जाने से डरते थे, लेकिन महाराज जी 9 वर्ष की आयु में ही वहां जाना उन्होंने शुरू कर दिया था। जब उनकी 13 वर्ष की आयु थी, उस समय उन्होंने उस जंगल के अंदर ही समाधि अवस्था में अंदर अनुभव किया। एक होता सुनना, एक होता अनुभव करना। सुना जाता है कान से, इंद्रिय से, और अनुभव किया जाता है सुरति से, जिसको कहते हैं बुद्धि से या ध्यान से, अटेंशन से। तो वो अनुभव कर रहे हैं, उन्होंने अंदर अनुभव किया ओम ब्रह्म सत्य। कोई बात नहीं, उन्होंने एक कागज पर नोट कर लिया घर पर आकर। अगले दिन फिर उन्होंने अंदर अनुभव किया समाधि अवस्था में, निरंकार अजन्मा अद्वैत पुरखा, वो भी उन्होंने नोट कर लिया। तीसरे दिन आगे उन्होंने अनुभव किया सर्वव्यापक कल्याण मूर्त परमेश्वराय नमस्कार। अब ये पूरा मंत्र बन गया 3 दिन का, जो महामंत्र के रूप में आपके सामने लिखा हुआ है। अब इसके 25 वर्ष बाद लगभग इतना समय बीत गया, तब एक दिन उन्हीं के शिष्य भक्त बनारसी जी ने महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी जब वाणी अवतरित होती है, जब लिखी जाती है, तो आप कहते हैं पहले महामंत्र ऊपर लिखो, कोई शुभ कार्य होता है तब कहते हैं पहले महामंत्र का उच्चारण करो, तो इस महामंत्र की क्या महिमा है? महाराज जी ने उस समय तो कोई उत्तर नहीं दिया उनको। तो प्रातःकाल वो महाराज जी के लिए स्नान के लिए पानी लाया करते थे, और साथ में वो चाय जो महाराज जी पीते थे दूध में पत्ती डालकर, वो चाय उनके लिए बना के लाया करते थे। जब ये दोनों काम वो कर चुके, तब महाराज जी ने उनके आगे एक कागज रखा, बोले प्रेमी जो तुम पूछ रहे थे वो ये। तो ये महामंत्र क्या है, इसकी वाणी, जैसे ये वाणी आपने उच्चारण करी, ये वाणी ईश्वरीय वाणी है। महाराज कहते थे प्रेमी इस महामंत्र के बाद ये वाणी निकलनी शुरू हो गई थी, और जंगल में चलते रहते थे ये वाणी निकलती रहती थी। इनको खुद पता नहीं था कि प्रभु क्या चाहते हैं। अब तुम लिखने वाले आए हो तब ये वाणी लिखी जा रही है। तो अंतर्यामी ईश्वर कैसे हमको गाइड करता है, कैसे शास्त्रों की रचना करवाता है सत्पुरुषों के माध्यम से, तो ये प्रभु लीला है। सत्पुरुष के शरीर के रूप में प्रभु कार्य कर रहे हैं, इसीलिए उस शरीर को मनुष्य समझ लेना ये हमारी गलती है, वो मनुष्य है ही नहीं। इसलिए उपनिषद कह रहा है ब्रह्मवित ब्रह्ममैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। हमारे सामने तो वो चलता फिरता शरीर है, लेकिन वास्तव में वो चलता फिरता ईश्वर। इसीलिए जब पूर्ण ऋषि पर, जिसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं, जिसको ब्रह्मवित कहते हैं, ऐसे ऋषि पर जब हमारा विश्वास आता है तो इस संसार में उस मनुष्य का यह दुर्लभ भाग्य होता है। ऐसे पूर्ण ऋषि पर विश्वास का आ जाना, यदि विश्वास नहीं आया तो आप तो जैसे और लोग होते हैं वैसे उनको भी समझोगे आप, और लोगों से अच्छा समझ लोगे उसको, आप कह दोगे बड़ा भक्त आदमी है, बड़ा सीधा सच्चा आदमी है, बड़ा सेवादार आदमी है, लेकिन वो खुद ईश्वर है ये आप नहीं, ये कल्पना नहीं कर सकते आप। तो जब उस पर विश्वास आने का मतलब ये है कि आपके अंदर ये धारणा आ गई, ये शरीर रूप में प्रभु है, ये जो बात कहेंगे या जो बात इन्होंने कही है वो शास्त्रोक्त सत्य है। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी इन्होंने कोई बात ऐसी नहीं लिखी या कही जो गीता में उपलब्ध ना हो या जिसको इन्होंने अपने जीवन पर घटाया ना हो। तो इसीलिए सत्पुरुष का संसार में प्रकट होना, सत्पुरुष का संसार में आना, ये पूरे संसार के लिए दुर्लभ घटना होती है। एक ईसा मसीह आए तो पूरे दुनिया के लिए दुर्लभ घटना नहीं थी क्या? वो पूरी दुनिया में कितने उसको ईसा को मानने वाले हैं? ठीक है, हम जैसे हर धर्म में देखते हैं, हर संप्रदाय में देखते हैं, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ ईश्वर भक्त होते हैं, कुछ ईश्वर के भक्ति के नाम पर आडंबर करते हैं, वो हर जगह होता है, हम लोगों में भी। लेकिन जो अवतार होता है, जो गुरु होता है, वो अंतर्यामी ईश्वर से मिलाने के लिए आता है, क्योंकि जैसा कि आप सुन रहे थे कि अंतर्यामी ईश्वर से जिसका मिलन होता है दुख तो वास्तव में उसी के दूर होते, सदैव सदैव के लिए दुख से उसकी निवृत्ति हो जाती है और आनंद में वो स्थित हो जाता है। तो ईश्वर आनंद का सागर है, आनंद का घर है, और वो मेरी देह के अंदर मौजूद है। तो इसीलिए महाराज जी के लिए जब ये महामंत्र प्रकट हुआ, जैसे कि आप गायत्री मंत्र की बात करते हैं, सुनते हैं, वो ऋग्वेद में वो भी ऋषि को प्रकट हुआ था, तो आज के युग में महाराज जी के द्वारा ये मंत्र प्रकट हुआ, साथ में इसकी वाणी प्रकट हुई, और वाणी कह रही है कलह कलेश सब दूर होए, पाए ज्ञान तत् योग, मंगत तत् अक्षर नित गाइए, प्रभु दर्शन होए से। जो इसका अंदर जप करेगा, गायन का मतलब बाहर गाने से नहीं है, मन में गाने से, क्योंकि ये जितने भी मंत्र होते हैं सिद्ध मंत्र, ये मन के अंदर मौन होकर इनका जप किया जाता है, जप का मेथड ही है ये, जिसके बारे में गीता में भी आता है, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि यज्ञों में, यज्ञों की बड़ी महानता बताई गई है वेदों के अंदर, कहते यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, सारे यज्ञों में सबसे बड़ा जो यज्ञ है वो जप यज्ञ है, जप के द्वारा आहुति अंदर देना। तो वैदिक काल से इस जप की महिमा है, कोई आज की बात नहीं है, इसीलिए समय समय पर ये सिद्ध मंत्र प्रकट होते रहते हैं। अब वो भाग्यशाली मनुष्य है जिसको ऐसे मंत्र पर विश्वास आ जाए और इस अमृत का वो अंदर सेवन करना सिमरन के रूप में शुरू कर दे, तब ये वही व्यक्ति जानता है कि उसके अंदर वो घटना घटती है। कैसे घटती है? ये सिद्ध मंत्र का काम क्या होता है? सिद्ध मंत्र हमारे मन के संस्कारों की शुद्धि करता है। और आपके संस्कार आप जानते हो, हमारे पता नहीं कितने जन्म हो चुके, हर जन्म में इसी प्रकार हम कर्म करते हैं जैसे वर्तमान जन्म में कर रहे हैं, और उनके जो इम्प्रेशंस हैं, उनके जो संस्कार हैं, वो हमारे मन के अंदर बने रहते हैं। मृत्यु होती है, देह जला दी जाती है, लेकिन मन सुरक्षित रहता है, अंतर्यामी ईश्वर के पास सुरक्षित रहता है। मैं भी सुरक्षित हूँ प्रभु के साथ और मेरा मन भी सुरक्षित है। तो वही मन मुझको वर्तमान देह के अंदर मिल जाता है। इस जन्म में फिर मैं नए संस्कार बनाता हूं, तो जो संस्कार पहले से बने हुए हैं उनको मैं मिटा नहीं सकता। मुझको कोई मेथड नहीं पता कि उन संस्कार को कैसे खत्म किया जाए। नए संस्कार बना तो सकता हूं मैं, लेकिन पुरानों को मैं एलिमिनेट नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी एक बार कुछ महाराज जी के शिष्य, जगाधरी की बात है, वहां महाराज जी अपने कमरे में विराजमान थे, शाम का वक्त था, सारे प्रेमी उस कुटिया के दाएं बाएं अपनी अपनी चद्दर ओढ़कर जप में लीन थे। तो महाराज जी के एक प्रेमी जो उनसे काफ़ी बातचीत किया करते थे, प्रेमी देवराज जी, वो महाराज जी से बोले, महाराज जी आपने तो सबको योगी बना दिया। तो महाराज जी क्या कहते हैं, वो प्रेमी पता नहीं ये कौन कौन सी योनि से आए हैं, इनको अपने संस्कार काट लेने दे। देखो, गुरु मंत्र के जाप से आपके जन्म जन्मांतर के संस्कार धीरे धीरे साफ होते हैं, और मन आपको पता ही नहीं लगता शुद्ध होने लगता है। जो वर्तमान जीवन में है उसमें भी महाराज जी गाइड कर रहे हैं, गुरु गाइड कर रहा है कि पांच नियम का पालन करो, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण। तो पांच नियम के पालन करने से क्या होगा कि वर्तमान जीवन तो शुद्ध होगा, शुद्ध संस्कार बनेंगे आपके, लेकिन जो पिछले संस्कार हैं वो ये गुरु मंत्र आपका उनका शोधन करेगा। तब होता क्या है इसका, जब मन का शोधन होता है तो योग विद्या क्या कहती है कि मन की चंचलता से प्राण की चलाए मानता कायम है। श्वास जो आपको आ रही है और जा रही है ये विषम है। योग शास्त्र माता है कि ये 12-16 की गति इसकी होती है। मन की चंचलता के कारण प्राण हमारा ये विषम चलता है, लेकिन जब हमारे संस्कारों की शुद्धि हो जाती है, मन हमारा प्योर होने लगता है, उसका प्रभाव इस प्राण पर पड़ता है, तो प्राण का अंदर आना बाहर जाना ये सम हो जाता है, इक्वलाइज हो जाता है। उस स्थिति में इस देह के अंदर एक अलग घटना घटती है। वो कहते हैं कि नाभ कमल ये खुल जाता है। जिस नाभि से गर्भ के अंदर बच्चे का लालन पालन होता है, जिस नाभि से हमारे सारी देह के अंदर नाड़ियां फैली हुई हैं, जिससे हमारा जीवन का संचार होता है, उसी नाभि में वो प्रभु विराज रहे, जिसको वाणी कह रही है कि नाभ कमल है अचरज थाना, जामे वसया श्री भगवाना, जासे उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। श्वास का उदय इस महाप्राण से होता है जो महाप्राण मेरी नाभि में निवास कर रहा है, उसी का नाम कुंडलिनी है। जिस कुंडलिनी के बारे में रामकृष्ण परमहंस एक भजन सुना करते थे, विवेकानंद से कहते थे कि भजन सुनाओ, वो भजन था, जागो मां कुल कुंडलिनी, जागो मां कुल कुंडलिनी, तुम नित्यानंद स्वरूपिणी, प्रसुप्त भुजंगाकारा आधार पद्म वासिनी। आधार पद्म कहते हैं कि मूल आधार चक्र को, सबसे नीचे जो चक्र है जहां कुंडलिनी सुप्त अवस्था में है, जब तक हम इंद्रियों के भोग संसार में कर रहे हैं वो सुप्त अवस्था में रहती है। जब हम गुरु के अनुसार साधना करते हैं और धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होता है, वासनाओं से मन पवित्र होता है, तब वो कुंडलिनी की ऊर्ध्व गति शुरू होती है, ऊपर को चढ़ना शुरू होती है। फिर जब ये नाभ कमल, जिसको मणिपुर चक्र बोलते हैं, जब ये खुलता है तब आपको उसका अनुभव होता है कि ये क्या चीज अंदर है। इसी को रामकृष्ण परमहंस काली कहा करते थे, जागो मां कुल कुंडलिनी, मां कहा करते थे। और मां में बड़ी आस्था थी कि मंदिर के पुजारी थे वहां पर, वो काली मंदिर के, तो मां उनको साक्षात सामने खड़ी हो जाती थी, उनके उनकी बातें उनसे होती थी, लेकिन वो जानते थे ये माँ वास्तव में मेरे अंदर निवास करती है, ये वो जानते थे इस बात के, इसलिए वो कह रहे हैं जागो माँ कुलकुंडली। तो यही प्रणव है, किसी के अंदर वो प्रभु काली रूप में प्रकट होते हैं, कुंडली रूप में प्रकट होते हैं, किसी के अंदर वो प्रणव के रूप में प्रकट होते हैं, नाद रूप में प्रकट होते हैं, शब्द रूप में प्रकट होते हैं। वो अंतर्यामी गुरु है। क्यों? क्योंकि बाहर जो गुरु आपको मिला है वो आपको अंदर ले गया पहले, और वो गुरु खुद कह रहा है, महाजी कहते थे प्रेमी सतगुरु तो अंतर रमे, पल पल करे पुकार, तू आज्ञाकारी होए के घटका पाठ उघार। तू गुरु की आज्ञा पालन कर, घट कौन सा है? यही नाभि है, यही घट है, इसको खोल दो, गुरु की बात मानेगा तब ये खुलेगा, क्योंकि इसके अंदर गुरु खुद निवास कर रहा है, वो तेरे प्राणों का मालिक है, तेरा जीवन है वो। तो जब गुरु की बात मानकर उसके सिद्ध मंत्र का यह जाप करता है तब इसके संस्कार धीरे धीरे शुद्ध होते हैं, और गुरु जब इसने धारण किया है तो इसको होश रहता है, मैंने पाप नहीं करना, किसी को दुख नहीं देना, मक्कारी और बेईमानी मैंने नहीं करनी, बेईमानी से पैसा मैंने नहीं कमाना है, दूसरे की मदद करने की कोशिश करता है, कम पैसे में खर्च कर चलाने की कोशिश करता है ताकि ज्यादा पैसे की जरूरत ही ना रहे, ज्यादा सामान खरीदा, ज्यादा सामान भोगा तो मन के अंदर संस्कार तो सामान के पड़े रहेंगे, प्राण तो उसमें पड़े रहेंगे, आपको क्या क्या संभालोगे आप? वो अंदर प्रभु को संभालता है, बाहर सादा जीवन रखता है, ज्यादा समय खर्च उसका ना कमाने में खर्च होता है ना संभालने में खर्च होता है, तो उसके संस्कार शुद्ध हो जाते हैं, मन शुद्ध हो जाता है, तब उसका संग अंतर्यामी राम के साथ बन जाता है। रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। फिर वो अंतर्यामी जो राम है उसके नाम का भजन कैसे करता है? वो नाद रूप परमेश्वर, वो प्रणव उसका अनुभव था, वो है अंतर्यामी राम। और जो प्रभु विराजमान है अपने पूर्ण स्वरूप में, जिसको मेरा निज स्वरूप भी कहा जाता है, मेरा असली रूप वही है, ये भटकने वाला रूप नहीं है मेरा, उसको दसवां द्वार कहते हैं, वो भी इस देह के अंदर है, कपाल जहां है। तो ये सारी साधना को धीरे धीरे चक्र को खोलती खोलती ये आपको ये शक्ति है, जो काली कहते हैं शक्ति है, और शिव कहाँ है? दसवें द्वार में है। तो शक्ति का, पार्वती का, शिव का मिलन वहां होता है, जीव आप्त काम हो जाता है, वासना से स्वतंत्र हो जाता है, इसकी मैं वहां खत्म हो जाती है, ये खुद अनुभव करता है कि जिसकी मैं साधना किया करता था, जिसके लिए तड़पा करता था मैं, जिसके प्रति मेरे मन में इतना आकर्षण था साधना काल के अंदर, वो मेरा निज रूप है, मैं और वो एक ही है। इसलिए मुंडक उपनिषद में एक उदाहरण आता है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी जो सखा थे, जो साथी थे, वो निवास करते थे, उसमें से एक वो वृक्ष की चोटी पर बैठा रहता था और एक वृक्ष के बीच में बैठा रहता था। उस वृक्ष में खट्टे मीठे दोनों फल पैदा होते थे। जब वो खट्टे फल खाता था तो बड़ा तकलीफ होती थी उसको, जब मीठे फल खाता था तो बड़ा खुश होता था, जब वो परेशान हो जाता था तब ऊपर देखता था अपने सखा को कि वो तो बड़े चैन से बैठा हुआ है, बिल्कुल शांत है वो। वो थोड़ा उसके नजदीक जाने की कोशिश करता था लेकिन आदत थी उसकी, फिर लालच में आता था, फिर वो खट्टे फल खाता था, कभी मीठे फल खाता था, धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ता गया। जब उस सखा के पास पहुंचा तब क्या देखता है? मैं और वो एक ही हो गए, दो शरीर रहे नहीं, वहां पर एक ही रह गया। वहां जाके पता लगा कि मैं कौन, अहम आत्मा गुडाकेश। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, हे अर्जुन मैं आत्मा हूं, हृत देशे अर्जुन तिष्ठति, मैं तेरे हृदय में निवास करता हूं, अर्थात तेरे अंदर निवास करता हूं। महर्षि रमण देखिए जो सत्पुरुष होते हैं, जो अवतार होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो कैसा मार्गदर्शन करते हैं। एक पारसी महिला थी श्री रामकृष्ण परमहंस की, वो महर्षि रमण की शिष्या थी। वो एक दिन उसके मन में इच्छा हुई कि किसी प्रकार जो है मैं गुरु के चरण छू लूँ। इच्छा उसके अंदर इसलिए हो रही थी कि वहाँ किसी को भी चरण छूने का की परमिशन नहीं थी। तो एक दिन प्रातःकाल क्या हुआ, जलपान के बाद उसने देखा कि महर्षि अकेले हैं, तो उनकी तरफ वो बढ़ी उनके चरण छूने के लिए। महर्षि ने कहा क्या बात है, तो उसने अपनी इच्छा प्रकट कर दी कि महर्षि आपके चरण में छूना चाहते। तो महर्षि क्या कहते हैं, ये गुरु के चरण नहीं है। उसके हृदय की ओर इशारा किया उन्होंने, यहां पर अपने मन को लीन करो, ये गुरु के चरण है। जिसको महाराज जी भी कह रहे हैं, सतगुरु तो अंतर रमे पल पल करे पुकार, हर पल तुझको पुकार रहा है तू अंदर आ, तू आज्ञाकारी हो के घटका पाट होगा, तू गुरु पर विश्वास तो कर, उसकी बताई साधना तो कर, तू लोगों से साधना ले सीख लेता। इसीलिए पूर्ण गुरु पर विश्वास का आना जरूरी है, बिना उसे काम नहीं होता। और हम तो मनुष्य है ना, कितना भी हमसे कह दिया कि मैं जीव हूं, शरीर के अंदर मैं निवास करता हूं, या मृत्यु होती है मैं बच जाता हूं, मेरा मन भी बच जाता है, ये शरीर तो जला दिया जाता है पता है हमको, फिर नई देह मिल जाती है, मैं उस देह से काम करना शुरू कर देता हूं, उस देह में रहना शुरू कर देता हूं। लेकिन व्यवहार में मैं ये बात कभी नहीं कर पाता, मैं अपने आप को ये नाम रूपधारी ही समझता हूं, ये एक तरह से मेरी मजबूरी। इसीलिए ईश्वर से भी मेरा संबंध नहीं बन पाता, क्योंकि रोम रोम में रम रहा है, और मेरा संबंध नाम रूपधारी से बनता, मनुष्य से बन जाता है। तो इसीलिए जब प्रभु गुरु रूप में प्रकट होते हैं, अवतार रूप में प्रकट होते हैं, मेरा यदि उन पर विश्वास आ जाए तो मनुष्य रूप में मुझे ईश्वर मिल गया। तेरी प्रगति उस पर विश्वास से होनी है, उसके दर्शन से तेरी प्रगति नहीं होनी है। तो पूर्ण गुरु पर जब विश्वास आ जाता है आपका, तब उसकी बात मानते हो, उसके मंत्र का जाप करते हो, उसने जिस तरह का जीवन जीने को कहा है संसार में, भूखे मरने के लिए नहीं कहा, प्यासे रहने के लिए नहीं कहा, मर्यादा में संसार के भोग भोगने, मर्यादा में कमाई करने, और समय सीमा बांध करके संसारी कर्म भी करने और ईश्वर भक्ति भी करना। वो जानते हैं कि एकदम से मनुष्य नहीं कर सकता, लेकिन अपना प्रोग्राम तो बनाना चाहिए, नियम तो बनाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे मेरा विकास हो और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो आपका जब गुरु से संबंध बनता है, जब उसकी बात मानते हो, बनता तभी है, तो गुरु आपकी मदद भी करता है, वो सिद्ध कर देता है कि मैं तेरे संग हूं, मुझको तेरा ख्याल है, वो सिद्ध कर देता है। अब देखिए, रामकृष्ण परमहंस की अर्धांगिनी थी शारदा मां। जब रामकृष्ण परमहंस का देहावसान हो गया, तो बंगाल के रीति रिवाज के अनुसार वहां पर जो रंगीन साड़ी नहीं पहन सकते, सफेद धोती पहननी पड़ती है, और हाथ में कुछ चूड़ियां वगैरह भी नहीं पहन सकते, कोई जेवर भी नहीं पहन सकते। तो शारदा मां ने सोचा कि पति तो रहे नहीं अब, तो क्यों ना जो कंगन थे उनके पास वो उतारने लगी, और मन में सोचने लगी ये साड़ी जो लाल धारी की पहनती हूँ, ये भी मैं उतार देकर सफ़ेद पहना करूँगी। अब जब ये मन में वो सोच ही रही थी, और कंगन जैसे ही उन्होंने उतारने की कोशिश की, रामकृष्ण परमहंस उनके सामने प्रकट हो गए। अब वो कहते हैं शारदा तूने ये कंगन कभी नहीं उतारने, ना तूने सफेद धोती पहननी है। मैं कहीं गया नहीं हूं, तू यही समझ ले इस तेरे कमरे के बराबर कमरे में मैं रह रहा हूं। वो अंतर्यामी ईश्वर है, सर्वव्यापक है, निराकार सत्ता है, वो अजन्मा है, अविनाशी है, लेकिन अपने भक्त के लिए, अपने शिष्य के लिए वो शरीर रूप में प्रकट भी हो जाता है। एक घटना तो मेरे अपने जीवन काल में मेरे घर में ही घटी। मेरी पत्नी बड़ी बीमार थी, ब्रेन ट्यूमर हो गया था, लेकिन उनकी महाराज जी में बड़ी गहरी श्रद्धा थी। जिस दिन सत्संग होता था आश्रम में, हम दोनों जाया करते थे, जिस दिन महाराज जी का नाम ना आए सत्संग में, कई दिन ऐसे होते थे महाराज जी कोई घटना नहीं आई, कोई नाम नहीं आया, तब घर जाकर मुझसे कहती थी आज का सत्संग अच्छा नहीं हुआ। मैंने क्या बात है, महाराज जी का तो कोई जिक्र ही नहीं आया। तो अंदर उनके कैसा प्रेम था गुरु के प्रति, ये उनकी इस बात से प्रकट होता था। तो जब अस्पताल में भर्ती थी, बरेली की ही बात है, तो एक दिन शाम के लगभग 4 बजे का वक्त होगा, डॉक्टर ने बताया कि इनका ब्रेन मैपिंग होना है, ब्रेन ट्यूमर था उनको। चांस की बात है, मैं उस समय उनके पास नहीं था, कहीं अस्पताल में नीचे ऊपर था। अब वो उनको भय लगा, पता नहीं मुझे कहाँ ले जा रहे हैं, अब ट्रॉली पर डाल के उनको ले जा रहे हैं, बड़ा भय लगा उनको, तो घबराई वो। तो जब अस्पताल से रिलीव होकर घर आ गई तब, हालांकि मेरी बेटी ने मुझको बताया था, लेकिन मैं उनके मुंह से ही सुनना चाहता था। जब थोड़ा वो ठीक हुई, फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा उस दिन तुम्हारा टेस्ट होने वाला था, तुम घबरा रही थी, तो क्या घटना घटी थी मुझे बताओ जरा, हुआ क्या था। उसी दिन सुबह को मैं उनके रैक पर हॉस्पिटल के अंदर ही महाराज जी की एक फोटोग्राफ रखाया था, और जब कोई भक्त दुखी हो तो जिससे प्रेम करता है उसके सामने तो रोने का अधिकार तो होता है उसको, जैसे माँ के आगे कोई रोता है तो गुरु के आगे भी रो सकता है। तो खुद बताया था मैं उस दिन बहुत रोई थी महाराज जी को अपने पास देखकर, और उसी दिन ये घटना घट गई कि आफ्टरनून में 4 बजे टेस्ट के लिए ले जा रहे थे, तो बहुत घबरा रही थी अंदर से, तो वो कह रही थी कि आप थे नहीं उस समय, मैं बहुत घबरा रही थी, तो महाराज जी खुद मेरी उस ट्रॉली के साथ साथ चलते रहे और उस रूम तक मैं अंदर गई, इसमें मेरा टेस्ट हुआ, मैं यही सोचती रही कि महाराज जी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे। जब टेस्ट हुआ तब महाराज जी ने उनका संग छोड़ा। अब देखिए, वो तो उनकी पत्नी है, शारदा माता उनकी पत्नी है, ये बात समझ में आती है कि रामकृष्ण परमहंस प्रकट होकर उनको कह रहे हैं, लेकिन यहां तो भक्त का और गुरु का संबंध है, उसके प्रेम से याद करता है, घर पर भी बड़े प्रेम से सेवा करती थी। मेरे पास तो लोग घर पे आते ही रहते हैं, कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई बातचीत करने के लिए आते रहते हैं। जब घर में कोई आएगा तो कुछ ना कुछ तो उसकी खातिरदारी करनी पड़ती है, तो उनको तकलीफ होना या काम करना स्वाभाविक था। कहता था कि मैं देखो, मेरे पास जो लोग आते हैं वो ईश्वर के बारे में चर्चा करने आते हैं, इसलिए तुम बस एक काम किया करो, मन में ये ध्यान रखा करो कि मैं प्रभु की सेवा कर रही हूं। इस भाव से तुम जो कुछ भी है, किसी को चाय पिलानी है, किसी को नाश्ता कराना है, भाव पीछे ये रखा करो, और इस बात को उन्होंने फॉलो किया। बड़े प्रेम से जो भी हमारे घर जाते हैं उनको अनुभव है कितने प्रेम से, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बड़ा है, चाहे वो बूढ़ा है, बड़े प्रेम से वो सेवा किया करते थे। तो उनके साथ कैसी घटना घटी जो साधारण व्यक्ति को तो विश्वास ही नहीं होगा इन बातों पर, लेकिन क्यों मेरे घर की बात है, मुझे पता है इस बात का। तो जो गुरु है वो अंतर्यामी ईश्वर है, शरीर रूप में उपलब्ध नहीं है तब भी वो आपके मदद के लिए प्रकट हो सकता है, क्योंकि वो अंतर्यामी ईश्वर है, स्वप्न में आकर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मौत की है मेरे आगे, बार बार मुझे मरना पड़ता है, फिर जन्म होता है। मेरी प्रॉब्लम तो दुख की है, कितना भी पैसा कमा लूं, कितना भी साजो सामान इकट्ठा करूं, मैं सुखी हो ही नहीं पाता, चिंताग्रस्त रहता हूं, कभी बीमार होता हूं, कभी कोई जिम्मेदारी होती है, कभी कोई जिम्मेदारी होती है। तो अल्टीमेटली जब मैं पूर्ण गुरु पर भरोसा करता हूँ, उस पर विश्वास होता है, उसके अनुसार साधना करता हूँ, उसके अनुसार जीवन जीने की पूरी ईमानदारी से कोशिश करता हूँ, तब मेरा उस प्रभु से, उस गुरु से व्यक्तिगत संबंध बन जाता है। वो प्रभु नाम रूपधारी है नहीं, लेकिन उस प्रभु का नाम रूपधारी के रूप में मेरा उससे संबंध बन जाता है, उसकी मुझे याद आती है, उसके आगे मैं रो सकता हूँ, उससे प्रार्थना कर सकता हूँ, अंदर साधना भी कर रहा हूं, कहीं कोई रुकावट आई तो मेरी मदद करता है। इसीलिए मानव जन्म लेकर गुरु से संबंध बनना लाजमी चीज है, ये जीवन में बहुत बड़ी कमी है। इसलिए ये मत सोचिए कि गुरु चाहिए तो किसी को पकड़ लिया आपने, शरीर रूप में है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, शरीर रूप में मिल जाए किसी गुरु, वो कोई लाखों में कोई एक होता है इंसान, लाखों में कोई, महाजी को भी मिले करीब 1000 शिष्य मिले लगभग, तो इतना अवतारी पुरुष उसको 1000 शिष्य, और जो संसारी गुरु हैं इनके करोड़ों शिष्य, तो असली गुरु तो मिलता ही नहीं, कोई भाग्यशाली होता किसी को मिलता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं गुरु धारण कर नहीं सकता, मैं ऐसे ऋषि को अपने जीवन में गुरु धारण करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस का गुरु नहीं है, महर्षि रमण का गुरु नहीं है, महात्मा मंगतराम जी का लोगों के गुरु नहीं है, तो जो उनके मार्गदर्शन के अनुसार साधना करता है, जो उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन को अपने शुद्ध करता है, जो उनके मार्गदर्शन के अनुसार ईश्वर की भक्ति करता है, उसके उसने जीवन में गुरु धारण किया है, वो उसके मन के अंदर बसा हुआ है, वो उसकी मदद करता ही है और एक दिन उस मंजिल तक पहुँचा देता है जिसको हम ईश्वर कहते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।